Já acho que será da Mata aqui. Grantrasa no Bhagavatam aqui. Se ele preocupar aqui, já vou dar e correr. Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
Om Namo Bhagavate
Vasudevaya.
Om Namo Bhagavate
Vasudevaya.
Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
Narayanam Namaskritya. Timirandhasya Jnananjana Shalakaya Chakshuram Militam Yena Tasmai Sri Gurave Namaha Sri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Yena Bhutale Svayam Rupa Kadamayam Dadati Svapadantikam Vandeham Sri Guru Sri Yuta Pada Kamalam Sri Guru Navaishnavamsya Sri Rupam Sagrajatam Sahaganaragunatam Tam Sajeva Sahagetam Sahavadutam Parijana Saritam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padam Sahagana Dalita Sri Vishwam Vitam Hare Krishna Karuna Sindhu Dina Bandho Jagatpate Gope
भगवान की कथाओं को सुना था, ऐसे विप्र पत्नियों के विषय में कुछ कहते हैं, तो उसी श्लोक का आश्रय के तल कुछ चर्चा करेंगे। भागवत दशम स्कंद अध्याय 23 श्लोक संख्या 18। श्रुत्वा अच्युत उपायत नित्यं दत्त दर्शन उत्सुका कथा आक्षित मनसा बभुव जात संभ्रमा श्रुत्वा मच्युतमायान्तम् श्रुत्वा मच्युतुपायान्तम् नित्य तद्दर्शनोत्सुका नित्यं तद्दर्शनोत्सुका तत्कथाशिक्तमनसो तत्कथाक्षिप्तमनसो बभुवो जातसंभ्रमा बभुवो जातसंभ्रमा श्रुत्वा मच्युतमुपायान्तम् नित्यं तद्दर्शनोत्सुका तत्कथाक्षिप्तमनसा बभूवो जातसंभ्रमा श्रुत्वा शङ्कर अच्युतम् भगवान श्री कृष्ण उपायतम पास आया हुआ नित्यं निरंतर तद्दर्शनं उसके दर्शन करने के लिए उत्सुका जो अत्यंत लालायित थी तत्कथा
उनकी कथा से
आशित मुक्त
मनसा
उनके मन
बभू
हो गई जात संभ्रमा अनुवाद। ब्राह्मण पत्नियां श्री कृष्ण का दर्शन करने के लिए सदैव उत्सुक रहती थी क्योंकि उनके मन भगवान की कथाओं से मुक्त हो चुके थे। अतः जो ही उन्होंने सुना कि श्री कृष्ण आए हैं तो वे अत्यंत उतावली हो उठी। तो कृष्ण प्रेम भक्ति रस का ये समुद्र है भागवत, और जो व्यक्ति अपने आप को अपने मन को कृष्ण में रमाना चाहता है, कृष्ण प्रेम से अपने हृदय को परिपूर्ण करना चाहता है, तो उनके लिए सरल और श्रेष्ठ साधना है भागवत कथा का श्रवण। वृंदावन दास ठाकुर ने लिखा है कि कृष्ण रसमय है, कृष्ण आनंदमय है, कृष्ण मधुर है, और ये उन्हीं का साक्षात स्वरूप है, इसलिए ये भी रसमय है, ये भी मधुर। जो कृष्ण में गुण है वही इसमें। कृष्ण भक्ति रस स्वरूप श्री भागवत, कृष्ण भक्ति रस का साक्षात स्वरूप है। ताते वेद शास्त्र है ते परम महत्व, तो ताते वेद शास्त्र कहते, जितने वेद पुराण शास्त्र है उसमें परम महत्व इसका है भागवत का, क्योंकि कृष्ण का साक्षात रस स्वरूप विग्रह। तो गंगा के तट पर विश्वधाम नंदिनी के वाम कम कर कमल पर जो विराजित है वे ही सुखदेव व्यास नंदन के रूप में इसी प्रेम भागवत का संदेश देने के लिए पुतल पर आए। इसको सरल भाषा में कहा जाए कि कृष्ण प्रेम कथा रस सरोवर के राजहंस है सुखदेव। ऐसे मानसरोवर में हंस लोग गाते रहते हैं, लेकिन एक ऐसा सरोवर हो जो कृष्ण की कथा का सरोवर हो, और उसमें ये हंस नहीं, ये तो परम परम हंस है सुखदेव। और श्रोता भी महाभागवत राजर्षि परीक्षित सब कुछ छोड़कर कृष्ण कथा के लिए बैठे, इतनी निष्ठा थी कथा में राजा को कि उनको और कुछ करना ही नहीं। सारे ऋषि मंडल ने एक साथ निवेदन दिया कि महाराज क्या किया जाए आपके लिए, कुछ नहीं करना, गायत्र विष्णु कर भगवान की कथाओं को कही। 1915 तमोपयांतम प्रतियंत विप्रा, हे विप्रवर आप कृपा करके उस दास पर अनुग्रह करने के लिए पधारे हो, तो आप सभी विप्रवृंद के चरणों में मेरा यही निवेदन है, मुझे कोई डर नहीं मृत्यु का, क्योंकि मैं गंगा के तट पर बैठा हूं जो गंगा भगवान विष्णु के चरणों से निकली। गंगा च देवी धृत चित्त मीशे, मुझे उसमें चित्त लगाना है जहां से गंगा निकली, मतलब भगवान के चरणों से निकली है, मैं चाहता हूं कि मेरा चित्त भगवान के चरणों में लगे, मृत्यु का डर नहीं है। तो ऋषियों ने कहा महाराज कैसे चित्त लगेगा, अभी सर्प आएगा आपको काटेगा, साधारण कोई आहट होती है तो भी लोग कथा को छोड़कर देखते क्या हुआ, और जब सर्प आने वाला हो कंफर्म था, और महाभयंकर तक्षक जो छूते ही शरीर आग लग जाती, इतना विषैला जहर है तक्षक में कि वो आग अग्नि बन जाता है जो भी वस्तु जिसको वो डस ले, व्यक्ति या वस्तु जो भी, और ये कन्फर्म था तो आपको डर नहीं है। तो कहते हैं कि दशत्वलम कुहक तक्षको वान, चाहे वो तक्षक काटे या फिर वासुकी या शेष या तक्षक का कोई भी बाप काटे, हमको कोई डर नहीं। क्यों? क्योंकि ये दुख दर्द चिंता तो मन में होती है ना, चित्त में होती है, और चित्त को मैं भगवान के चरणों में लगा दूंगा ताकि मेरी शरीर का या जो भी होगी मतलब, और भगवान को भगवान में चित्त लगाने के लिए एक ही वस्तु है वो है उनकी कथा। हम सभी देखते हैं भगवान के सामने खड़े हो, मंदिर में भगवान के सामने कीर्तन हो रहा फिर भी चित्त नहीं होता हमारा, घूमता रहता है, बातें बिहारी के सामने दृष्टि है, कीर्तन हो रहा है सब जगह भक्त खड़े हैं लेकिन हम शरीर से खड़े हैं मन तो, लेकिन कथा में जब कोई कृष्ण प्रेमी उस कथा को चाहता है जिसमें उसका चित्र लगा है, वैसे भक्त जब कथा गंगा को प्रवाहित करता है तो महापाखंडी का चित्र भी लग जाएगा कथा, सुनना चाहते क्या कह रहा है इसके बारे में। योगियों का चित्र एकांत में हिमालय में भी नहीं लगता भगवान में, बड़ा मुश्किल काम है, अर्जुन ने जिन्हें मना कर दिया चंचल ही मना कृष्ण, बहुत मुश्किल है मन को। कथा एक ऐसी वस्तु है जिसमें चित्त स्वाभाविक लगता है, और एक घंटा कथा सुना जाए पूरा दिन स्मरण किया जा सकता है अगर ध्यान से सुना, स्मरण तो नित्य करना है कि हमने बात की स्मरण। तो महाराज परीक्षित कह रहे कि गायत्र विष्णु गाथा हमको और कुछ नहीं करना, और इसको कैसे परीक्षित जी के सामने सुखदेव जी ने कथा चालू किया। और जहाँ तक दशम स्कंद का प्रश्न है कृष्ण लीला चरित्र का, तो वहाँ तो परीक्षित ने और डिमांड किया कि अब और किसी अवतार की और किसी राजाओं की कथा नहीं सुननी, केवल कृष्ण की सुननी। पहले तो कथा के फिर और एक डिमांड किया कि केवल कृष्ण कथा, ये दशम स्कंद की शुरुआत में तो यही है, भगवान सोम सूर्य कथित वंश बहुत कर दिया आपने, सूर्य वंश चंद्र वंश की कथा अब केवल कृष्ण है।
महाराज परी से पूछते हैं और बलराम जी के विषय में, कृष्ण के विषय में, मथुरा में कितना दिन रहे, द्वारिका में कितना साल रहे, कितनी शादियाँ की, मामा का क्यों मारा, ये सब प्रश्न सब कुछ पूछ लिए कृष्ण चरित्र में। फिर कहते हैं एक सर्वचैन्य में मुने कृष्ण विचस्तितम, हे मुनिराज मैंने जो भी कृष्ण के विषय में पूछा है वो कहिए, जो मैंने नहीं पूछा है वो भी कहिए। एक काम करिए आप जितना जाते हो जानते हो कही थी मैं जो मैं ऐसे तो सब पूछ लिया था, द्वारिका लीला में किस बार, मथुरा लीला, ब्रज लीला सब पूछ लिए, फिर भी कहते हैं कि मैं पूछा हो तो कहिए, नहीं पूछा हो वो भी कहिए, जो भी जानते हो सब कह दिए। फिर भी सुखदेव जी पूरा नहीं कह पाए, कृष्ण लीला तो अनंत है। लेकिन हम इस प्रसंग से ये कहना चाहते हैं कि महाराज परीक्षित को कथा सुनने में लालसा थी, निष्ठा थी, यही मोक्ष के दरवाजे खोल देता है। प्रसंग मजरम पाशम आत्मानम कवियोगी सएव साधुषु मोक्ष द्वार अपावे, कपिल भगवान देव जी को जो आसक्ति आसक्ति है लेकिन जा नहीं सकती ये आसक्ति ऐसी है कि आ लेकिन शरीर में या पुत्र कहीं लग गई तो फिर बड़े बड़े वक्ता ब्रह्मा जी आकर समझाए लेकिन उधर होगा नहीं, केवल आना ही जानती है जा नहीं सकती, हिंदी में इसको कहा जाए। लेकिन नहीं आ सकती जो है अटैचमेंट है वो वैष्णव के प्रति किया जाए, विष्णु कथा के प्रति किया जाए तो वही आसक्ति गुण बन जाए लल्यम तदमूल्य। और जब इस तरह सुना राजा की बात को सुखदेव जी ने तो कहा सम्यक व्यवस्थिता बुद्धि तब राजर्षि सप्तम, हे राजर्षि तुम्हारी बुद्धि परफेक्ट जहां लगनी चाहिए वहां लगी, दशम स्कंध के पहले अध्याय का 15 नंबर, सम्यक पूर्ण रूप से कंप्लीटली व्यवस्थिता बुद्धि, बुद्धि का जहां डेस्टिनेशन स्थान होना चाहिए वो है कृष्ण चरण, कृष्ण कथा आपकी लगी है। वासुदेव कथायास्ते जाता नैष्ठ की रति, निष्ठा की रति कृष्ण कथा में आपकी लग चुकी है तो आपने जीवन की परिपूर्णता को पा ली। और श्रोता का इस तरह उत्साह प्रेम देखकर सुखदेव जी भाव से कृष्ण चरितामृत को दान करते हैं। तो जो श्लोक हमने अभी सुनाया उसमें भी सुखदेव जी कहते श्रुत्वा अच्युत, अच्युत के विषय में ये विप्र भारिया पत्नियां सब सुनी थी पहले, और जो कृष्ण के विषय में सुनता है कृष्ण का अपना प्रभाव है कि उसको देखने के लिए तरसता है। तो इस कृष्ण बलराम चरित्र को थोड़ा सुनेंगे कि श्रवण पुण्य श्रवण कीर्तन ऐसे उद्देश्यात्मक बहुत सारी बातें होती है, सिद्धांतिक बातें होती है, कथा के आड़ में वो सब आता ही है लेकिन मूल प्रयोजन कथा है सुनना, उसको सुनने से चित्त शुद्ध होता है। कुछ लोग कहते हैं कथा सुनने के बाद कुछ करना है, कुछ नहीं करना, सुनना ही करना है, उसके बाद कर लो तो अच्छा है लेकिन न भी कुछ सुनना ही अपने आप में भक्ति है, श्रवणम अपने आप में सेपरेट भक्ति है। परीक्षित ने सुनने के बाद क्या किया, कुछ सुना है मोक्ष हो गया, सुनने की सुनना ही अपने आप में पूर्ण है। लेकिन गीता का उद्देश्य सुनने के बाद कहा जाता है कि जो बोला है वो करिए, देश का सर्वभूतान किसी को द्वेष मत करिए, सबको मित्र मानिए, उपदेश सुनने के बाद करना होता है, लीला को सुनना है बस, इसके बाद करना क्या। तो कृष्ण कथा कृष्ण की तरह प्रकाशमान, जहां कृष्ण तहां नहीं माया, कृष्ण सूर्य है ना, इसको हमारे विद्वान लोग बताते हैं। सूर्य ने कंप्लेन किया ब्रह्मा जी को, सूर्य देवता है और ब्रह्मा जी देवताओं के लीडर है और कुछ भी तकलीफ होता है तो ब्रह्मा के पास देवता लोग जाते हैं। तो सूर्यदेव ने अंधकार को नष्ट, सूर्य उगता है तो अंधकार तो रहता ही नहीं अपने आप, रवि रजनी ठान रही रात तभी होती है जब सूर्य न हो, तो सॉरी अंधकार ने कंप्लेन किया ब्रह्मा के पास कि मेरा मैं अंधकार आपकी सृष्टि का एक तत्व हूं ना, तो मुझे सूर्यदेव नष्ट कर रहा है, मेरी सत्ता ही नहीं चलने देता,
तो आप ब्रह्मा है ना, तो हमको दंड दीजिए,
तो हमको चल नहीं देता हमारी कहीं भी,
जहां भी जाए वो पहुंच जाता है तो मुझे मार देता है, मुझे नष्ट कर देता है। तो ब्रह्मा जी ने कहा हाँ तेरा भी कुछ तो होना चाहिए, तो अदालत में केस अर्ज हुआ तो गुनहगार को तो बुलाया जाएगा ना, सूर्यदेव को बुलाया गया रिमांड पर, दूसरे दिन आई अदालत लगी है, ब्रह्मा की सारे देवता खड़ा। सूर्यदेव ने कहा क्या क्या तकलीफ है? बोले आपके नाम पर एक कंप्लेन है, अंधकार कह रहा है कि आप उसको नष्ट कर देते, उसकी सत्ता रहने नहीं देते। सूर्यदेव बोले कौन बोले? अरे वो खुद आके कंप्लेन कर रहा है, बुलाओ उसे, बुलाओ उसका, मैंने किया ही नहीं ऐसा सूर्यदेव, बुलाओ उसे। तो ब्रह्मा ने कहा अभी बुलाते, अंधकार हाजिर होता है ना कोर्ट, आप देखे अंधकार आ ही नहीं रहा है। जज जोर से चिल्लाए ब्रह्मा जी अंधकार हाजिर हो, एक बार दो बार ऑब्जेक्शन थोड़ा गुनेगर हाजिर है तो केस आउट हो जाएगा। सूर्य कहा देखो मैं कह कहा गुनेगर को हाजिर कर दो, अब मैं जाओ ना अभी तो केस उठ गया ना, गुनेगर जो कंप्लेन दर्ज कराने वाला वही आया नहीं, एफ आई आर जिसके फाड़ा है वो तो खड़ा है, तो आया ना। सूर्य जी ने कहा आप जाओ अपने काम पर, हाँ अभी कर लिया, जैसे कि अंधकार आया महाराज महाराज, बोले कहा था तू अब तक, वो कहा था जब तक सूर्य में आई नहीं से तरफ करूँ क्या, तो अभी अब ब्रह्मा के मैं क्या करूँगा। ऐसे ही अगर हमारा चित भगवान कृष्ण में है तब तक तो चिंता नहीं, इसलिए महाप्रभु गौरांग ने सूत्र दिया है कृष्ण सूर्य से माया है अंदर, जहाँ कृष्ण तहाँ नहीं माया। अगर हम कृष्ण के नाम में, कृष्ण के काम में, सेवा में, उनके चिंतन में है तो माया का दुष्प्रभाव नहीं होगा, लेकिन जैसे ही हम कृष्ण को छोड़ देते तो माया में तो है ही है। इसलिए कथा एक कवच है भक्तों के लिए, कवच समझते हैं ना, जो शस्त्र से रक्षा करता है। ऐसे माया के जो आसक्ति या क्रोध या ईर्ष्या के जो प्रभाव है सब रजस तमस के, उससे बचने के लिए साधक के पास एक कवच है कृष्ण कथा सत्संग। इसको कोई व्यक्ति पहन के रखता है तो बच जाएगा इन सारे माया के उपद्रव से। और इस बात को सुखदेव जी जैसे साधु बढ़िया से जानते हैं, और भी सारे ऋषि इसीलिए यहाँ पर बैठे हैं। तो विप्र पत्नियों के गुणों को स्वयं भगवान अपने श्रीमुख से गाते हैं, गुण गाते हैं, और उस सुनने से हमें भी भक्ति बढ़ता है, और कथा अपने आप में इतनी प्रेम भक्ति से पवित्र है कि हमारे चित्त को भी शुद्ध कर देती है। इसलिए इस श्लोक का आश्रय लेकर इस कथा में हम प्रवेश कर रहे हैं। यह 23वां अध्याय है भागवत का, 22वें अध्याय में क्षीरहरण लीला का वर्णन है। सुखदेव गोस्वामी ने जब इस लीला का वर्णन किया तुरंत उसके चित्त में भगवान कृष्ण के प्रति पूर्ण समर्पित यज्ञ पत्नियों का संस्कार उदित हुआ, याद आ गया सुखदेव जी को। अच्छा परीक्षित पूछे नहीं, कुछ 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 प्रसंग में परीक्षित पूछते थे लेकिन इसके विषय में कुछ पूछे नहीं। सुखदेव जी सामने से कह रहे थे, जैसे मैं कहा था कि आप जो जानते हैं वो भी पूछा वो भी बताइए, नहीं पूछा वो भी बताइए, तो उसमें है ये प्रश्न, क्योंकि कृपा सिद्ध में इनका नाम गोपियों के पत्नियों का बलि महाराज का भी उसी में साधन सिद्ध और कृपा सिद्ध होते हैं। तो भगवान सखाओं के साथ सारे ब्रजमंडल की शोभा को देख रहे हैं, यमुना के तट पर सुंदर कमल खिले हैं, वृक्षों में पल फूल लगे हैं, शीतल मन समीर बह रहा है, और सारे ब्रजवासी मतलब पेड़ पशु पक्षी ये भी ब्रजवासी हैं, वो कृष्ण के रूप सुधा को पीकर आनंद में। उसी समय सूर्य की प्रखर किरणें ग्रीष्म ऋतु, ये भी भगवान को सुख देने के लिए ऋतु होती है। वृंदावन में हमेशा वसंत होता है, लेकिन वर्षा को आना, शरद को आना, कोई भी ऋतु का चयन होना वो योग माया का कारण है, भगवान के सुख विधान के लिए, भगवान की लीला संपन्न करने के लिए, क्योंकि ब्रजधाम इन काल से परे है, इन गुणों के प्रभाव से ऊपर है, योग माया के अधीन है, महामाया के अधीन। तो देखा जा रहा है सब सखा थक गए और सबको भूख लगी, प्यास लगी, उसी समय वृक्षों को भगवान ने देखा, वृंदावन के वृक्ष के ऊपर ब्रजेंद्र नंदन की दृष्टि गई और उन वृक्षों को देखकर भगवान कुछ श्लोक बोले, बहुत सारे श्लोक बोले, उसका व्याख्या बहुत लंबा है, लेकिन सारे श्लोकों का एक सार श्लोक उसने बोला कि एतावत जन्म साफल्यम। हे सखाओ देखिए, भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि इन वृक्षों का जन्म सफल, एतावत जन्म साफल्यम, देहिना यह देहेषु, जिसने भी देह लिया है, इस देह में रहने वाला देही आत्मा जो शरीर धारण किया है, तो जितने भी शरीर है उसमें ये वृक्ष का शरीर सफल है। क्यों? क्योंकि प्राणे अर्थे दिया वाचा श्रेय आचरण सेवा, ये वृक्ष अपने प्राण से, वचन से, बुद्धि से सबका श्रेय, श्रेय मतलब कल्याण, मंगल, शुभ करते हैं। मानो वृक्षों के द्वारा मनुष्य को मैसेज दे रहे भगवान कि उसी का जन्म सफल है जो अपनी वाणी से, अपनी बुद्धि से, अपने शरीर से सबका भला करे, सबका हित करे। और ऐसा कोई है तो वृक्ष है जो कभी किसी का बुरा नहीं कर रहा। तो भगवान खुले दिल से वृक्षों के गुण गा गए और इस तरह गाते गाते चलते चलते वृंदावन की सीमा तक पहुंच गए और मथुरा की सीमा तक पहुंच गए, मथुरा और वृंदावन की बॉर्डर थी। और चल रहे हैं, बोल रहे हैं ऊपर से तार, तो सब भूखे और प्यासे हैं। जब सखाओं ने उस कृष्ण के गान को, उस वृक्षों की व्याख्या को सुना, बंद कृष्ण बोलना बंद किए, तब ये लोगों ने कहा अच्छा कथा खत्म हो गई प्रसाद। वो कृष्ण ही वक्ता थे तो मतलब ऐसे ही भूख लग गई थी। तो श्री गोपाल सुखदेव जी कहते कि श्री गोपाल, गोपा बहुवचन में श्री गोपो ने कहा राम राम महाबाहो कृष्ण दुष्ट निबर्हणम। हे राम राम, बलराम जी को ऐसे ही बलराम सीधे राम कहते हैं, तो राम राम दो बार कहा राम राम। ऐसे राम शब्द का क्या अर्थ होता है? जो सर्वान रमयति सुखयति इति राम, जो सबको सुख दे, सबको आनंद दे, उसे राम कहते हैं। उपनिषद में जैसे कृष्ण शब्द की व्याख्या है, ऐसे राम शब्द की भी, कृषि भूवाचक नचन्य गुरु, कृष्ण आनंद की भूमि है, ऐसे राम का भी है, रमन्ते योगिनो अनन्ते सत्यानन्दे चिदात्मने इति राम पदे नाश्य शब्द ब्रह्मति। जो योगियों के चित्त में रमण करते हैं, जो सबको सुख और आनंद देते हैं, इसीलिए इस परम तत्व को राम कहते हैं। और बलराम जी तो थे ही ऐसे, सबको सुख आनंद देते थे, गर्गाचार्य ने इसलिए नाम रखा था राम। रमयन सूर्य दो गुण ययम ही रोहिणी पुत्रो, ये जो रोहिणी का पुत्र है, रमयन सूर्य दो गुण है, जो अपने गुणों से सबको सुख देता है, इसीलिए इसका नाम मैं राम रखता हूँ, ये गर्गाचार्य ने कहा है भागवत में, जो नामकरण के लिए आए थे। और दशरथ नंदन का भी नाम है राम, वो नाम वशिष्ठ जी ने रखा था, सूर्यवंश के गुरु। लेकिन पहले के गुरु लोग नामकरण करने के पूर्व ज्ञानी होते थे, त्रिकालज्ञ होते थे, तो बच्चे के भूत भविष्य को देख लेते थे, उसके तत्व को समझ जाते थे, कौन है, क्या है, क्यों है, सब, और इसीलिए उनके गुणों के अनुसार नाम रखते थे। अभी अभी ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी नाम रखते हैं गुरु। क्यों? क्योंकि उसकी शक्ति और उसकी कृपा से नहीं है तो भी वो गुण आएंगे। ओके, नाम दास है नहीं, लेकिन दास रखा जाए तो फिर धीरे धीरे दास दासी बनेगा, ओके, चांस है। इसलिए से जो भी हो, पहले या बाद में डेस्टिनेशन तो आएगा। गुणों को देखकर नाम रखा जाए या नाम रखकर गुण लाए जाए, तो मूल तो यही है ना, आना है कैसे, ये दीक्षा विधि है, उसमें नाम और मंत्र से पांच वस्तु होती है, तो एक नाम होता है। तो वहां पर भी बड़ा सुंदर है रामायण में, जय आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु का समुद्र है, वशिष्ठ जी कहते हैं कौशल्यानंदन को गोदी में रखे हुए रामायण में, कि जो आनंद सुख का समुद्र है, सीकर ते तीन लोग उपास्य, और इस आनंद सिंधु का एक बिंदु से पूरा तिलोक त्रिभुवन सुखी हो जाएगा। इसलिए हे दशरथ जी, मैं इस कौशल्यानंदन का नाम रखता हूँ राम। राम ऐसे बोलने में भी सुख मिलता है, नाम है, इसका थोड़ा टेढ़ा है क्री, लेकिन ये सरल है, शान स्वभाव जैसा है, इनका नाम जैसा ही गुण गुण आते हैं ना बोला तो ये सरल है। राम जी चल रहे हैं मिथिला में, जनकपुर में तो कहीं नजर नहीं, ये मथुरा में चलते हैं तो किसी को छोड़ते नहीं, थोड़ा स्वभाव है दोनों एक है, रंग रूप दो एक, लेकिन इनके चप्पल नयन विशेष इनके थोड़े सीधे चलते, इनके तेरे मेरे बाकी तो एक ही है। तो राम राम दो बार क्यों कहा, क्योंकि शुद्धार्थ विप्सा, संस्कृत में एक शब्द दो बार लिया जाए उसको विप्सा कहते हैं। जब कोई व्यक्ति आर्त में हो, दुख में हो, या किसी बात पर पॉइंट मतलब जोर देना चाहता हो, दो बार कहता है तुमने कुछ तुमने तुमने, जैसे कोई बाल्टी घेर लेकर चला जाए, हे भाई भाई कुछ अर्थ चाहिए उसको, विशेष ध्यान उसका केंद्रित करने के लिए है ना, दो बार दिया जाता है। और ये सखा लोग इतने भूखे हैं तो ये शाम कह रहे थे देखो बलराम देखो हमारी ओर, क्योंकि आप देखे ना भूखे लोगों का मुखड़ा मुरझाया हुआ रहता है, पता चल जाता है भूखा है, पता चल जाता है दुखी है, पता चल जाता है पैसे वाला है, सब जो भी उसके शरीर के कुछ लक्षण से मुख से पता चल जाता है कि इसके अंदर कुछ है, और भूखा व्यक्ति तो ऐसे ही पता चल जाता है। अब एकादशी के दिन देखिए सब भक्तों के दिन व्यंगन के पड़ते जैसे हो जाते तो ढीले ढीले तीन चार बार फरार किए फिर भी ऐसा नहीं तो भूख लेकिन उसको जमता नहीं रोटी वो काम नहीं करता, जो चीज चाहिए वो चाहिए, वो नहीं है तब तक मुख मुद्रा की रेखा पर भाव नहीं बनता, ये दशा है। तो सखा सब ताल सुखा हुआ है और भूखे है और चल रहे हैं, ऊपर से कथा सुनाया था, भूखे को प्रवचन देना ये सबसे बड़ा दंड है इसलिए हम भावनगर में कथा करते पहले प्रसाद दे लेते तो कल राजेश से हम बात करें बोले अच्छा पहले होता है, बोला हमारा एक ही इसको भावनगर ऐसा है जो पहले प्रसाद देता है तो इसको प्रसाद दे रहे तो बाद में देता है तो कोई रहेगा ही नहीं, लेकिन फिर भी लोग बैठते हैं थोड़े सोते हैं सुनना है वो जो भी जिसको करना है। तो कथा सुना है कि ऊपर से भूखे हैं ये सब, लेकिन नीति में कहा है कि शुद्धा तुराणा न बलम न विवेक, अगर कोई व्यक्ति भूखा है तो उसमें बल नहीं होता, इंद्रियों में ढीला हो जाता है, दूसरा बुद्धि भी आउट ऑफ माइंड हो जाता है, वो कुछ भी गर्म हो जाएगा थोड़ी सी बात पे क्रोध में आ जाएगा, हमारे गुजराती महाराष्ट्र से बढ़ता सिंपल पूछिए तो तुम्हारे जोड़ पीछ पर सीधा, इसलिए शिव जी की बारात में जो भी थे उसको पहले प्रसाद दिया गया क्योंकि वो उसी गुण वाले थे। रामायण में शिव जी की बारात का वर्णन है तो इसी से सिस्टम चला है, आप देखिए गुजरात में ब्याह आदि में और दूल्हा जाता है मंडप में और बाराती जाते हैं महाप्रसाद में उसको जो करना है पड़े मरे करके तो ये सब भूत मतलब भूखा व्यक्ति भूत जैसा ही हो जाता है, कहने का वो क्या करेगा वो कुछ फिक्स नहीं कर सकता। तो सुधारणा न बलम न विवेकम, बुद्धि में विवेक नहीं रहता क्या करना क्या बोलना क्या नहीं, आउट हो जाता है। कामातुरणाम न भयम न लज्जा, जैसे काम हृदय में आता है तो भय नहीं रहता, वेद शास्त्र की लज्जा शर्म नहीं रखता, पूरा बड़े बड़े श्लोक है नीति में इसका क्या रिएक्शन होता है। सखा सब कह रहे राम राम देखो हम भूखे हैं हमारे मुख को देखो, और सब ऐसे आकाश की ओर देख रहे कहीं कुछ खाने मिल जाए ढीले ढीला। महाबाहो महासमर्थ इति सूचयन, और आप राम मानो बोलोगे हमको क्यों कह रहे, बोले आप ये दूर कर सकते हो समर्थ हो आप भगवान हो। महावीर्य इति पाठ वेद कई कई भागवत में महावीर्य भी लिखा गया है इसका। तो अच्छा कृष्ण का नाम बाद में लिए राम का पहले लिए, राम राम कृष्ण दुष्ट निबरण, हे कृष्ण दुष्टों को निबरण नष्ट करने वाले। तो क्योंकि लोकार्थ है नीति एवं अग्रज है प्रथम व्यक्ति, लोक में नीति है कि जो बड़ा भाई उसका नाम पहले लिया जाता है ना, राम जी बड़े हैं दाऊ दादा तो उसका नाम सखा लोग जानते थे कि कुछ भी कहना तुम कोई कागज लिखना हो या कुछ तो मोटा भाई में पहलू है ना बड़े के एक लोग नीति है कि बड़े का आदर देने के लिए उसका नाम बैल रखो, जबकि भले उसमें गुण न भी हो, काम छोटे से भी हो, लेकिन नीति तो वही है, वही चलानी पड़ेगी। अथवा नीति बीति छोड़ो, कृष्ण के सखा है, कृष्ण से काम करवाना है, कृष्ण को प्रसन्न करना है, तो कृष्ण भी तभी प्रसन्न हो गया जब अपने बड़े भाई को पहले रखें, क्योंकि भगवान भी तो नीतिज्ञ है ना, क्योंकि वो खुश होंगे और कि मेरे मुझे मुझे पूज रहा है तो मेरे भाई को भी आदर दे, ये भगवान भी चाह रहे हैं। इसलिए राम राम महाबाहु कृष्ण दुष्ट निबारण, अल्टीमेट तो कृष्ण से कहना कि हे कृष्ण तुम भी सुनो, ये चित्र पत्र मधुमंगल ये सब सखा मंडली है, हजारों सखा है झुंड के, और भगवान से कह रहे कृष्ण दुष्ट निबरहणम, जितने भी दुष्ट गोकुल में आए आपने उसको मारा है, जितने भी असुर आए उसको आपने आज तक मारा है, तो एक दूसरा एक असुर एक दुष्ट हमारे अंदर आया है उसको भी आप मारिए, क्योंकि आप मार सकते हो, आपने आज तक मारा है, मतलब पेट में आग लगी हुई है, भूख भी एक अग्नि है ना। गीता में कृष्ण क्या कहते हैं, अहम वैश्वा नरो भूतवा प्राणी नाम अंदर रहते हैं, कि ये भी एक आग है और पचाती है, उसका पहले जलाती है फिर बुझाएगी, दोनों तरफ की आग वैश्वा नर अग्नि के रूप में, तो तुम ही हो, और प्रकट रूप में भी आग बुझाना तुम्हारा आदत है। जब मुंजाड़ी में आग लग गई थी गोकुल में, तो भगवान ने सब सखाओं को कहा कि आँख बंद करें, सखा आँख बंद किए, भगवान पी गए, जब खुले तो कुछ नहीं था। और काली दमन लीला के बाद भी वो सुखदेव जी ने कहा कि पूरे जंगल में आग लग गई यमुना के तरफ, तो भगवान ने कहा कि आँख खुली थी उस समय, फिर भी पी गए। भगवान ये दिखाते कि भक्त आँख बंद के भजन करे या खोल कर करे, मैं रक्षा कथा के समय जागर मेरा काम है रक्षा करना है भक्तों की, तो कुछ भी हो मैं करता हूँ। तो ये सखा सब जानते हैं कि ये दूर कर सकता है, तो जितने असुर आए उसको आप दोनों भाइयों ने मारा है, लेकिन एक भूखा सुर नाम अंदर आया है, ईशान वही बात दे सुन, किसको मारना है बलराम जी कहे कृष्ण, तो कहते कि अंदर सुधा एक भूख रूपी आग असुर हमारे पेट में है, तब शांति कर हतो अर्हत, उसको आप शांत करिए, आप कर सकते हो, शांत करना आपका काम। देखिए जितने भी ऋषि मुनि हुए जंगल में, ये शुद्धा एक भूख ऐसी वस्तु है जिसको आज तक कोई मार नहीं सका, उसको शांत कर सका दो घंटे के लिए। अभी नाश्ता किया, ब्रेक को फास्ट किया, फास्ट को ब्रेक किया, तब तक लग नाश्ता, गुरुदेव समझा दे कि आस्था मतलब खाना होता है संस्कृत, फुल पेट खाने को संस्कृत में अश्नान के दिन आस्था, और न मतलब फूल नहीं खाया थोड़ा, तो उसको नाश्ता कहते हैं ब्रेकफास्ट। रूट तो लैंग्वेज संस्कृत है ना, सब हिंदी बिल्कुल नजीक से चलती है, इंडियन कोई भी भाषा संस्कृत से पड़ोसन है उनकी, बाकी थोड़ी दूर दूर है, लेकिन तो नाश्ता मतलब पूरा, कुछ लोग कहते नाश्ता भी लंच का बाप होता है। लेकिन दो घंटे के लिए तीन घंटे के लिए बस, फिर उठा कोई कंप्लीट नहीं मार सका इसे, और मर जाए तो भी टेंशन है, भूख नहीं लगती दवा खाने जाना पड़ता कि भूख क्यों नहीं लगती, लगे तो भी तकलीफ, ना लगे तो ज्यादा तकलीफ, तो ये भूख मित्र भी है और दुश्मन भी है ऐसा लग रहा है। और अगर आपको भूख टाइम से लगती है तो शरीर स्वस्थ माना जाता है। मैं अभी इंडिया में दो महीने पहले एक मित्र है हमारे डॉक्टर, उसके पास गया, प्रभु जी कुछ लग रहा है कि थोड़ा चेकअप कराओ, तो उसने एक ही प्रश्न पूछा, खावन भाव में तो बहुत करके कहीं बंद हो, अगर कोई तकलीफ होगा ना तो नहीं खा सकते आप ठीक से, ना भूख लग मतलब लग रहा है तो कोई तकलीफ होगा नहीं, तभी ऐसा सिस्टम है, ऐसे डिसीजन दे दिया हमने। लेकिन सही भी है कुछ मात्रा में इनका, कि स्वस्थ शरीर की पहचान है कि भूख लगती है उसको और खाता है तो शांति देती है आयुर्वेद के अनुसार। लेकिन बड़े बड़े ऋषि हुए विश्वामित्र जैसे, जो केवल पर्ण खाते थे जंगलों में, तो भी खाते तो थे हवा कुछ ना कुछ सालों तक, लेकिन कोई ऐसा नहीं हुआ कि कुछ कर ना पाए, जीव शरीर को टिकाने के लिए कुछ ना कुछ आहार चाहे हवा के कुछ तो लेना पड़ता है, सूखे बेर या कुछ भी, पूर्ण रूप से इसको कोई नहीं जीत सका, केवल आप दोनों भाई हो जो बुद्ध को मार सकते हैं। इसलिए तब शांति कर हमारी इस भूख को आप शांत करिए, ये निवेदन है सरकार। इसमें बहुत सारी बातें हैं विचार करने लायक हम भक्तों को, ये तो केवल अन्न के भूख की बात हो रही, इसके अलावा भी बहुत भूख होती है, किसी को धन की भूख होती है, किसी को ज्ञान की भी भूख होती है और जानना है, और किसी को मान की भूख होती है, उन्होंने बुद्धा होके लगा मेरे को सब पूछने, तो बहुत सारे टाइप का अत्याहार शब्द पर भक्तिनाथ ठाकुर इस तरह का सब भाव दे रहे हैं। अत्याहार केवल यही आहार नहीं, और भी आहार जो प्रत्येक इंद्रियों का विषय उसका आहार है। जीव का जैसा भले स्वाद है लेकिन आंखों का रूप उनका रूप उनका आहार माना जाता है। ऐसे हिरण्यकशिपु उदाहरण दिया जाता है कि पूरे देवता संसार के हिरण्यकशिपु को प्रणाम करते उसके आतंक से। एक 5 साल का लड़का उसका ही नहीं करता था तो बस इनको तकलीफ था। अब एक पगे वाला के तरफ हमारे गुजराती में के आखी दुनिया तेने पगे लागे से बोलो तारो घर नो छोकरो नो लागे तन वांदो नहीं। ये भी जो इसको कहते मान की भूख, सब मुझे पूछना है प्रतिष्ठा, ये पॉइंट। कृत्यंते सहलोका त्रयेश्वरा, हिरण्यकशिपु खुद कहता है कि मैं अपनी भ्रुकुटि को टेढ़ा करता हूं तो त्रया लोका सहेश्वरा कृत्यंते कांपने लगते हैं। तस्य मैं न भीत मूढ़, लेकिन तू मूड मेरे सामने ऐसे खड़ा है, डर ही नहीं तो साशनम की बल दे, किसके बल से तू बल कर रहे पूछा हिरण्यकशिपु 7-8 साल भागवत कैसे क्यों इस तरह प्रहलाद का सवे बल बल कहाँ से आपको बल आता है, बल तो एक ही जगह से है बल बल बता चाहे गीता में कृष्ण। तो मतलब ये मान की भूख है, सब जगह आपकी भूख पर बहुत हो सकता है, और इसको आग कहा गया है वेद की जठराग्नि। संसार दावा नर लीला लोगों मंगला में एक दावा में तो आप सुनते हो जंगल में आग लग जाए उसको क्या कहते हैं दावान, और कभी कभी पानी में भी आग लग जाती है उसको बड़वा नल कहते हैं संस्कृत में। पानी में भी आग लगेंगे, आग पानी जबकि आग को बुझाता है लेकिन उसमें जब पेट्रोल की आग लगा दी जाए तो कुछ नहीं करना, उसमें भी बढ़ती है पानी में, इसको संस्कृत में बड़वा नल कहते हैं। और एक पेट में लगती है इसको हम जठरा नल कहते हैं। मन में भी आग लगती है उसको कामा नल कहते हैं, कामवास, ये भी काम भी एक आग है। बुद्धि में भी आग लगती है उसको क्रोधा नल कहते हैं, क्रोध में आग लगती है। और हृदय में भी एक बड़ी खतरनाक आग है जिसको भक्तों से बहुत बचना चाहिए, वो है ईर्ष्या नल। ईर्ष्या भी अपने आप में बहुत बड़ी आग है, अपने को ही जलाती है, किसी से ईर्ष्या हो गई तो वो नहीं जलता, घर में वाला जलता है, उसको तो पता भी नहीं था, वो तो बेचारा अपने आप काम, लेकिन ये सुखी नहीं होंगे, जलाती है ना अपने आप को ईर्ष्या, अपने आप को बहुत जलाती है। और ये 6 हुई ना, सबसे महत्वपूर्ण आग है विरह नल, किसी प्रेमी के विरह में जब तड़पते हैं जठरानल है तो तेषां शांतिं करोतु अर्हति, इसलिए आप इसको शांत करिए क्योंकि आप कर सकते हो दोनों में। श्री शुक उवाच, इस तरह जब गोपों ने भगवान राम और कृष्ण से निवेदन किया तो श्री सुता कथया मास सुखदेव जी बोलने लगे, तो अब तक कौन बोल रहा है, और ये श्री सुखोवाच कौन बोल रहा है, ये सुत गोस्वामी बोल रहे हैं नैमिषारण्य के ऋषियों को कि गोपों ने जब इस तरह कहा कृष्ण से तो फिर सुखदेव गोस्वामी बोले, क्योंकि तो मूल वक्ता तो सुखदेव जी है, उस संवाद सुख परीक्षित संवाद को रिल किया जा रहा है सनक सुत के बीच। इति विज्ञापितो गोपे भगवान देवकी सुत, इति इस प्रकार विज्ञापितो विशेष ज्ञापितो निवेदन किया गया गोपे गोपाल गोपो के द्वारा किसको, भगवान सर्वसमर्थ इति सर्वज्ञ इति
ऐश्वर्य में भगवान में छह है ना ज्ञान, सर्वज्ञ है भगवान। तो भगवान तो जानते हैं कि भूख लगी है और ये भूखे हैं और क्या करना है, सब जानते हैं। लेकिन फिर भी इन लोगों ने जब बोला, किसको बोला? देवकी सुतर, श्री देवकी जो करुणा से जिनका हृदय भरा है और उनका पुत्र है, तो ये भी दयालु है, माँ के गुण बेटे में आते हैं। तो देव की दया की मूर्ति है, करुणा से भरा हृदय, और इनका पुत्र है तो ये भी दुख देख के दुखी होगा और कुछ करेगा। गुण बताया जा रहा है देव की सुत से। ऐसे देव की सुत दोनों है, कृष्ण और बलराम, लेकिन प्रकट रूप में बलराम रोहिणी पुत्र माने जाते हैं। नहीं तो देवज्ञा गर्भ संबंध तो देहांत, ये तो देवी के गर्भ से भी इनका संबंध तो है, लेकिन देव की सुत तो दोनों सुने, राम और कृष्ण दोनों को कहा गया, लेकिन जवाब देंगे देव की सुत, मतलब कृष्ण, बलराम कुछ नहीं। जबकि उनको दो बार, उसको पहले बुलाया गया था, दो बार बुलाया गया था, फिर भी वो चुप रहे, बोलेंगे देव की सुत, कृष्ण बोलेंगे। क्यों और क्या? भक्तायाम विप्रभारियायाम, बस इस भूख, इस गोपों का निवेदन सुन के भगवान के चित्त में, हृदय में याद आ गई। किसकी? अपने भक्तों की। कौन भक्त? विप्र भारियायाम, उस विप्र पत्नियों की याद आ गई। क्या कनेक्शन है भूख से और सखा से इन भक्तों का? सखाओं ने कहा भूख लगी है, आप हमें खाना दीजिए, और भगवान देव की सुत को तो पता ही है भूख लगी है, फिर भी उसको याद आ रहा है भक्तायाम, अपने भक्तियों भक्तन की याद आ गई। विप्र भारिया प्रसिद्धम, इसलिए बड़े प्रसन्न हो गए, एकदम अब्रवी, और इस प्रकार बोले, अब्रवी मतलब कहना उसे। तो देव की सुतन शब्द पर सनातन गोस्वामी लिखते हैं कि देखिए सखा क्या नहीं जानते कि ये यशोदा के पुत्र है कि देवकी के? सबको नंद नंदन, यशोदा नंदन से मतलब है, लेकिन हरिवंश पुराण से प्रमाण देते हैं कि नंदस्तु भार्या दे नाम, यशोदा देवकी च, नंद की पत्नी का भी नाम था देवकी। हरिवंश पुराण में लिखा गया है कि यशोदा का भी नाम देवकी था। तो जहां देवकी सूत्र से ही वो वसुदेव पत्नी से तात्पर्य नहीं है, यशोदा से ही है, क्योंकि यशोदा को भी ब्रज में क्या कहा जाता था? देवकी, उनका नाम भी था देवकी, लेकिन देवकी का नाम जो अलग करने के लिए तब यशोदा नाम है। जयति जन निवास हो देवकी जन्म वादो, भागवत में श्लोक है कि पूरा जन्म जगत जिसमें निवास करता है, जिसके रोम में, वे देवकी के उदर में निवास किए। तो यशोदा के गर्भ में भी गए, वहां पर भी देवकी शब्द से यह आचार्य ने दिया। और दूसरा बात, कहीं भी जाइए, ऊपर चाहे नीचे, किसी देवता या असुर मनुष्य की बात ही छोड़िए, भरोसा या रक्षा करने लायक कोई है तो वह है देवकी। तो कहते ना क्या करे, रक्षा करेगा ऊपर वाला नीचे वाला, कोई नहीं कर, लव देवकी का लाभ करना है। इसलिए सखा केवल उसके ऊपर देवकी सुधर जाएगी। आपने जब तक जितनी समस्याएं दूर किया, और भगवान भी देवकी पुत्र है, इसलिए कोई भी उसको कहीं भी थोड़ा भी याद करता है या भक्ति किया है तो भगवान भूलते, क्योंकि उनका हृदय है अंतर, एक तो सर्वज्ञ है, अंतर्यामी है, सब जानते हैं, लेकिन कुछ लोग होते जानते लेकिन कुछ नहीं करते, मरने दो। लेकिन ये देवकी के पुत्र है, दया से भरे है, इसलिए छोड़ेंगे नहीं, जो भी करता है उसका उसका ऋण चुका के रहे, उसको बदला दे के रहे। इसलिए भाग्यवान है ये पत्नियां भी और ये सखा भी ब्रज के, कि कृष्ण पर मरते हैं, देव की सुत विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं पूरा, और भगवान का भी अपने भक्त का भरोसा है, भक्ति का प्राणी विश्वास है। इसलिए हिंदी लोग, हिंदी में हम लोग कभी भी कहते हैं कि कुछ लोग है संसार में जो किसी के बाल पे मरते हैं, कुछ लोग है किसी के गाल पे मरते हैं, कुछ लोग किसी की चाल पे मरते हैं, कुछ लोग किसी के माल पे मरते हैं, सब मरते हैं, जिंदा है वो जो देवकी के लाल पे मरते हैं। वास्तव में जी तो ये रहे, बाकी वैसे भी मर ही रहे थे, लेकिन मरकर भी वो जिंदा है जो देवकी के, इस देवकी पुत्र पर मरते हैं। क्योंकि कोई भी प्रसंग देखिए, जन्म से लेकर अंत लीला तक, कृष्ण की प्रकट भूमि लीला पर जिस जिसने उसको पुकारा, जिस जिसने पर भरोसा किया,
उत्सवित जब प्रकट थे तब नहीं, आज अप्रकट है फिर भी, चाहे मेरा भरोसा करे चाहे नरसिंह मेहता करे, कोई भी उस पर बस भरोसा करना चाहिए, भगवान नहीं बोलते, देव की पुत्र का स्वभाव। इसीलिए मनुष्य को चाहिए कि इस भगवान के भरोसे रहे, इस पर बने। अब देखिए सखा भूखे है तो भगवान भी तो भूखे है ना, ऐसा नहीं कि भगवान स्पेशल नाश्ता करके बैठे, सब साथ में निकले थे सुबह से, और नाश्ता खत्म हो गया तो आज लंच के टाइम में सब चले, उल्टा वक्ता तो बोल कथा तो ये बोले थे तो ज्यादा भूखे। लेकिन भूख में भी ये भगवान ऐसे है कि अपने भक्तों को नहीं भूलते, बाकी भूख में अभी अभी आपने सुना ना व्यक्ति सब भूल जाता है, लेकिन कृष्ण चाहे खाए हो या भूखे हो अपने भक्तों को वो नहीं कभी नहीं भूल, कभी नहीं भूलते। तो चक्रवर्ती पाल लिखने की देखिए कृष्ण का स्वभाव, शुद्धार्थ विश्रीष है, ये भी ईश्वर, ईश्वर भी दुखी है, उसको भी भूख है मनुष्य, वो भी मन बाल लीला कर रहे वो भी भूखे है, सखा भूखे तो ये भी भूखे, और सखा भूखे मारे हाय हाय कर रहे हैं कुछ करो, लेकिन ये भूखे होते हुए भी अपने भक्त विप्र भारिया यानी उस पत्नी को भूलते भूले नहीं, और इसीलिए उसको उसको प्रसन्न करने के लिए उनकी भक्ति से उनको दर्शन देने के लिए इदम ब्रवी इस प्रकार बोले। नहीं तो सखाओं की भूख दूर करना कृष्ण के लिए कौन बड़ी बात है, केवल एक यस्मिन तुष्ट जगत तुष्ट तत्व कहते हैं कि वो एक बार डकार ले तो सारा विश्व अपने आप फूल हो जाएगा, दुर्वासा के वर्ष की पूरा 10,000 साधु ऐसे ही फूल हो गए बिना खाए कोरे कोरे हवा से ही कुछ नहीं, क्योंकि भगवान खाए उस द्रौपदी के पात्र में से तो कर दिए, तो विश्वंबर है ना उनकी उनके कार्य में और उनकी इच्छा में अंतर नहीं, कृष्ण जो सोचे वही हो जाता है भगवान, तो उनकी उनका विचारना या करना एक है। तो भगवान केवल विचार करे कि सब भूख चली जाए तो अपने आप चली जाए, लेकिन भगवान ऐसा नहीं है, क्यों, क्योंकि उसका अपने पत्नी जो विप्र पत्नी है जो उनका भजन कर रही थी उनके स्मरण में बैठी थी उनको दर्शन देना है, इसीलिए सखाओं में शायद भूख लगा दिए लगा के रखें। प्रयात देव यजनम जाइए जाइए, कहाँ जाए सखाओं को भगवान सत्रम आंगिरसम, आंगिरस सत्र यहाँ दूर से धुआं दिख रहा है मथुरा के बॉर्डर पे, भद्रोड़ आज भी है परिक्रमा ब्रजमंडल की पहला स्टेशन निकलती है वृंदावन से तो भद्रोड़ फर्स्ट दर्शन भद्रोड़ जहाँ पर भद्रोड़ है ऐसे, लेकिन भद्रोड़ अभी कहते हैं ब्रज के स्थान को जहाँ भगवान सखाओ भात मांगने गए थे जहाँ मिलन हुआ था भगवान से, तो भगवान कृष्ण कह रहे कि जाइए वहां, क्या हो रहा है वहां यज्ञ हो रहा है, तो सखा कह रहे एक तो भूख लगी ऊपर से प्रवचन सुनने ढूंढ फेंक रहे हो ऊपर से, और यज्ञ थोड़ी चाहिए हमको खाना, भूख से भूख लगी उससे मतलब, बोले आप जाइए ब्राह्मण ब्रह्मवादी ना, वहां पर कुछ ब्राह्मण है जो ब्रह्म के वादी है बेटा है जानते है, मतलब वो हा स्वाहा कर रहे हैं यज्ञ कर रहे हैं, तो जहाँ यज्ञ होता है वहाँ यज्ञ पुरुष में उसमें अर्पण करने के लिए प्रसाद भी तो होता है, और ये ब्राह्मण स्वर्ग की कामना के लिए कुछ यज्ञ कर रहे हैं तो निश्चित वहाँ तुमको कुछ प्रसाद खाने को मिलेगा, इसलिए आप वहाँ जाइए। ब्रह्मवादी में ब्राह्मण है लेकिन ब्रह्म अवादी न, वास्तव में पर ब्रह्म को नहीं जानते हैं, स्वर्ग काम्य स्वर्ग जाना चाहते हैं, ये अर्थ मतलब वेदों के श्लोकों को वाद केवल रटते हैं उसका तात्पर्य मैं हूं वेदों का सार वेदांत कृत वेद विदे, ये लोग भगवान को पक्का पता है कि ये कंजूस कुछ देने वाले नहीं फिर भी भेज रहे हैं इनको, ब्राह्मण कोई देगा नहीं आप सब इस कथा से परिचित हो, लेकिन पता है भगवान को तो सब पता है ना ये क्या है लेकिन फिर भी भेज रहे हैं, तो इसमें ये छुपा है कि वो ब्राह्मण है, ब्रह्म मतलब वेद वादी ना वेद बोलते भी है लेकिन वेदों का सार मैं हूं भक्ति है ये वो जानते केवल बोलते हैं उसके जीवन में नहीं है, लेकिन सखा तो प्रकट अर्थ समझ रहे हैं कि ब्रह्म मतलब ब्राह्मण है वेद के मंत्र जानते हैं बड़े पावन है बड़े पवित्र है तो कुछ तो दे ही देंगे, प्रकट अर्थ तो ये है लेकिन अंदर छुपा है कि ये केवल ब्रह्मवादी है कुछ नहीं होगा तुम्हें। तत्र गत्वा वहां जाइए ओदनम याचह और भात मांगिए, ओदन शब्द का अर्थ होता है भात, भात मांगिए भगवान का मतलब था कि भात देंगे तो साथ में थोड़ा सब्जी दे ही देंगे, दाल भी दे ही देंगे, मांगना भात है। या तो दूसरा अर्थ है कि हो सकता है कि ब्राह्मण कमजोर हो तो मिठाई मेवा ना दे, लेकिन भात तो दे ही देते हैं। भात इजी होता है, सब दे देते, चलो पड़ा रहता है भात, सेने में भी तकलीफ नहीं, मिठाई नहीं दे सकते। अस्मद वो कहे कि क्या कृष्ण तुम हमको इतने नीचे गिरा रहे हो, भीख मंगवा रहे हो हमसे इसी जीवन में, हम तुम्हारे सखा है और इस तरह किसी के पास जाकर हाथ लंबा करे तो क्या, ये क्या धंधा सिखा रहे हैं हमको भीख मांगने का। तो भगवान कहते नहीं नहीं, अस्मद विसर्जित, मेरे मेरा नाम देकर मांगना, मेरे लिए मांगना है, कीर्तयन तो कीर्तन करना है मेरे नाम का, और आर्य चमकदान और मेरे बड़े भाई का बलराम जी का, बलराम के नाम से मांगिए और मेरे नाम से मांगिए, आपकी नहीं घटेगी ना, आप अपने लिए मांगना नहीं जा रहे, मेरे लिए जा रहे। और कीर्तन करते हुए मांगना, कीर्तन करते हुए तो कोई भी दे देता है, हरि नाम गाता है तो कोई, अरे ये संसार देखते ट्रेन में से भिख मांगे पिक्चर का गीत गा के भी अपना जीवन चलाते, तो कीर्तन करेगा उसको क्यों नहीं देगा, तो आप जाइए जरूर देंगे आपको। इत्यादिष्टा भगवता, इस तरह भगवान ने आदेश दिया, गत्वा याचन्त देव तथा, मांगने के लिए लोग तैयार हो गए, मरता भूखा क्या नहीं करता, बेचारे गए भूखे तो थे ही थे, और गए तो कृतांजलि फूटा, वहां जाके तो ब्राह्मण सब बड़े मोटे मोटे और तेज मंत्र बोल रहे थे, यज्ञ का धुआ खा खा के चमक रहे थे सब, और यज्ञ में स्वाहा स्वाहा हो रहा था, तो ये बच्चे बेचारे भगवान कृष्ण के सखा, यहाँ लिखा गया है याचंत गोपा, वास्तव में कृष्ण के सखा कृष्ण के ही समान है, जैसे भगवान का आदर होता है ऐसे ही उनके सखा या उनके भक्तों का होना चाहिए, लेकिन ये गधे उठे नहीं, न जानते इस तत्व को, केवल धुआं खाते हैं, नहीं समझता है इस बात, लेकिन ये तो बेचारे बच्चे हैं छोटे छोटे, हाथ जोड़ कर कह रहे कृत्वांजलि पूटा विप्राम दंडवत प्रणाम किए, सभी तरफ प्रणाम किए, मांगने के लिए तो कुछ भी करना पड़ता है, भगवान नहीं बोले थे प्रणाम करने के लिए, लेकिन ये एक शिष्टाचार है सामान्य कि जाते हैं तो ब्राह्मण है जो बड़ा है तो कम से कम प्रणाम किया जाए, और इन लोगों को तो चाहिए था तो प्रणाम ज्यादा नहीं, स्वार्थी ज्यादा झुकता है ना भैया, ज्यादा प्रणाम करना है। पतिता भूमि दंडवत प्रणाम किए, वास्तव में ठीक नहीं था, क्योंकि भगवान के सखा प्रणाम करे, ये ब्राह्मणों से कई ऊंचे थे ये लोग, भले ही ब्राह्मण कुल हो पंडित है लेकिन भगवान के सखा है ना, सखाओं की स्थिति तत्व से इनसे कई ऊपर है, लेकिन फिर भी ये लोग झुक रहे और दंडवत प्रणाम कर रहे हैं, हे भूमि देवा, ये सब स्वाहा करते हुए देखे कि कोई कोई तो आया है प्रणाम कर रहा है, लेकिन इनको ध्यान देखते हुए पश्चिम अपनी न पश्चिम ध्यान नहीं दिए, तो सखाओं ने सोचा कि हम लोग प्रणाम कर रहे हैं आए शायद इनको पता नहीं, तो बुलाते हैं, हे भूमि देवा, मतलब पृथ्वी के देवता, भूसुर कहते हैं ना ब्राह्मण को, स्वर्ग के लिए पृथ्वी के देवता है, ये लोग सब सुन रहे हैं लेकिन फिर भी ध्यान नहीं दे रहे, क्योंकि देना नहीं है, मना करने का स्टाइल है, ध्यान मत दे, स्टाइल है ना इधर उधर देखो, और एक लास्ट गुजराती लोग बढ़िया जानते हैं, पछी राखो काले आओ, मना भी नहीं किया, दिया भी नहीं, काले आज ये रोकड़ा में उधर काले तो बस काल में के बाद क्या बांधो चलता है, कोई ध्यान नहीं दिया। श्रुणत, आप सुन रहे हो ना कृष्ण से आदेश का, हम कृष्ण के आदेश से आए, बलराम का नाम लेने को पहले बोला था कृष्ण ने, बाद में मेरा लेना, क्योंकि बलराम थोड़े प्रतिष्ठित थे ना, बड़े थे ब्रज के दाऊद माने जाते, माइनो नाम तो खराब भगवान हो तो, कृष्ण का नाम तो जाएगा क्योंकि थोड़ा लिस्ट बेकार लिस्ट में था, इनका थोड़ा सम्मान कृष्ण, मानो सखा कहे कि हम वैश्य गोप है, मांगते हुए अच्छे नहीं लगते, ब्राह्मण मांगते हुए अच्छा लगता है, या क्षत्रिय भी मांग सकता है, राजा कर मांग सकता है, तो मतलब बलराम क्षत्रिय है ना, वसुदेव का पुत्र है, सब जानते रोहिणी का है, तो बलराम क्षत्रिय मांग रहे हैं तो उसके नाम से मांगे गए, लेकिन ये कहे कृष्ण से मुख भेजा है, मतलब जिससे प्रेम होता है उसका नाम आदत है ना, कुछ भी हो तो कृष्ण, इसलिए सखाओ के मुंह से निकल गया, फिर कहे ओह राम राम ने भी भेजा है हमको, भूमि देवा, मतलब इसके ऊपर बहुत सारी बातें है, सखा ये कह रहे हैं कि देखिए आप भूमि के देवता हो ना, जानते हैं भूमि किसके ऊपर टिकी है, कि पृथ्वी किसके ऊपर टिकी है, राम के ऊपर, अनंत शेष के ऊपर, बलराम के ऊपर, और वे राम खुद आए हैं तुम्हारे पास, हम मांग रहे हैं मतलब हम नहीं मांग रहे, उनके द्वारा मतलब हमारे द्वारा वही मांग रहे तुमसे, और क्या मांग रहे, केवल भाग मांग रहे, रसमलाई थोड़ी मांग रहे, लड्डू थोड़ी, भाग देने में क्या दिक्कत, वो धर्म। लेकिन ये कोई ध्यान नहीं दिया, सुनते हुए भी अनसुनी कर दी। गाय चार रहे हिंदू रहे, इधर मस्जिद में गाय चराते हुए आए, मतलब ये कह रहे कि हम लोग भीख मांगे नहीं है, ये भीख मांगना हमारा धंधा भी नहीं है, लेकिन हम गाय चराने का हमारा बिजनेस है। कितना पवित्र कर्म है गोपाल। लेकिन गाय चराते चराते इधर आ गए और भूख लग गई, इसीलिए मांग रहे। आप ये समझते हैं कि हर रोज ये लोग कटोरा लेके निकल जाते होंगे, नहीं नहीं, भीख मांगना हमारा काम नहीं है, वो तो भूख आज लग गई और आज लंच थोड़ा कम लाए थे, नाश्ता थोड़ा ज्यादा हो गया था, तो इसीलिए मांग रहे हैं। और बुभुक्षित हो एक काम, उसको लगा कि ये कोई ब्राह्मण ध्यान नहीं दे रहा और न देंगे। हम लोग जाते ना इसको अंग्रेज समझ जाते आका ही न दे आप ले लो। तो ऐसे ये लोग भी समझते कि देंगे नहीं कुछ सब सखाओ के। तो कहा कि अगर श्रद्धा है तुमको तो दो के लिए दे दो, बस कृष्ण बलराम के लिए दे दो। और वास्तविक चक्रवर्ती पाद लिखते कि सखा भी भूखे थे और कृष्ण से कह रहे कि हम भूखे हैं। वास्तव में प्रेमी का हृदय ऐसा होता है कि वो प्रियतम के दुख को अपना बहाना बनाकर कहता है, भूख कृष्ण को लगी है, बलराम को लगी है और इसीलिए मुझे लगी है कहकर इनका उपाय करना है, क्योंकि ये महान व्यक्ति सामने से कहेंगे नहीं। तो वास्तव में ये भूखे है, बुला चिल्ला है सब भी, लेकिन अंतर तो कृष्ण के सखा है और कृष्ण को सुखी करना यही इनका काम है। इसलिए कह रहे कि ज्यादा नहीं देना है, कम से कम दो व्यक्ति का थोड़ा पाद दे दो, कृष्ण बलराम के लिए दे दो। और इस तरह सखाओं ने मांग की। ऐसे तो बड़ी लंबी कथा है ये भागवत की, लेकिन कुछ नहीं मिला। कृष्ण के पास वापस आ गए तो भगवान से निवेदन किया, एक तो भूखे, ऊपर से और परिक्रमा कराए, ऊपर से अपमान भी कराए, आप सखा गर्म थे बिल्कुल, किधर भेजते, उनको पता है कि ये गुरु के प्रसन्न को जिस दिन उधर भेज दिया। भगवान हंस रहे हैं कि भीख मांगो को कभी मान भी मिले कभी अपमान भी, सहना चाहिए। नीति सिखा रहे कि इसमें ऐसा नहीं होता, व्यसनी धन शुभ गति व्यभिचारी, लोभी व्यक्ति अपना मान चाहे होगा नहीं, व्यसनी व्यक्ति धन चाहे मिलेगा नहीं, भिखारी मान चाहे वो भी मिलेगा। लक्ष्मण जी ने सूर्पंखा को कहा है, तो भीख मंगे का तो मान अपमान होता रहता, चलता रहता है। एक काम करिए, उसकी पत्नी को कह जाइए। तो यहाँ पर एक बात करके मैं खत्म करता हूँ, हमको जिससे कहना है कि फिर से वही भेज रहे हो, बोले आप उसकी पत्नियों के पास भेज रहा ना, ब्राह्मण पत्नियों के पास। और अरे शादी एक ही मकुंडली जो इनके तो लिए कभी कभी कुंडली मेल करके करते हैं ना, तो कुंडली दोनों की कंजूसी कुंडली होगी तो हमारा तो फिर से बैठा होगा ना। तो सखा कह रहे नहीं अब नहीं जाएंगे, एक बार लाज गई अब नहीं जाएंगे। बोले नहीं नहीं, मांग गया पे तो पत्नी भी, मैं उन पत्नियों को जानता हूँ, भगवान ये कह रहे वो निश्चित देंगे, केवल मेरा नाम सुनाना बस, मांगना भी यहाँ तो आपने मांगा ना, दंडवत प्रणाम कुछ नहीं करना, केवल कहना कि कृष्ण आए हैं बस। लेकिन यहाँ पर बड़ी सुंदर बात है संस्कृत में, मां पत्नियां क्या था? तो ब्राह्मण पत्नी ने क्या पत्नियां कहा केवल, और पत्नियां कहने के पीछे कुछ विशेषण न दिया जाए तो मां कह रहे कि पत्नियों को जाकर कहो, तो किसकी पत्नियां प्रश्न होगा ना, किसकी पत्नियां, जब नहीं बोला जा रहा है ब्राह्मण की पत्नियां, जो जो बोल रहा है उसकी पत्नियां। भगवान तो वदताम वरम, बोलने में सबसे मास्टर है ना, उनको कौन बच सकता है। लेकिन ये हमारे आचार्य की कृपा है कि इस तरह भागवत के अर्थ को बता दे, कह तो केवल मैं आया हूँ बस, मांगना नहीं पड़ेगा तुमको। बहुत कृष्ण ने कहा तो कहा चलो भाई, बहुत कह रहे थे एक ट्राई करते हैं, जाते रहे तुम इतना विश्वास से कह रहे हो। बोले वो ऐसे नहीं है, ऐसे उसका शादी हो गया था, कुंडली का मेल नहीं था, इसलिए ऐसे नहीं, आप जाओ केवल बस बताओ कि मैं आया हूँ बस। लेकिन यहाँ लिखा है सुखदेव जी कहते हैं कि जैसे पत्नी शाला के पास ये लोग गए, यहाँ पत्नियां सब लोग लगा तैयार करके बैठी थी, और इन्होंने कहा कि कृष्ण यहाँ आए हैं, उनके सखा है। इतना सुनते ही जो हमने श्लोक बोला श्रुत्वा अच्युत आया तब, इतना सुनते ही सब आनंद से सबका मुखड़ा जैसे कमल खिलता ऐसे खिल गया, और पहले तो इन सखाओं को देखकर खिल गया, क्योंकि जिससे हम प्रेम करते जो हमारे उनके ये और उनका संदेश लेकर आए, इसलिए हमारे लिए इससे भी ये बढ़कर है। अब तक तो यह था कि तुझे पाने की चाह करते थे, कभी कहते थे अब तक तो यह था कि हे कृष्णा हम तुम्हें पाना चाहते थे, लेकिन अब हमने बदल दिया, अब तुझे चाहने वाले की चाह करते, अब तो हम तू जिसको चाहता है उसका मिलन करा देते, तुझे चाहते थे लेकिन वो तो सेकेंडरी काम हो गया है, अब तू जिसे चाहता है या जो तुझे चाहता है उसको हम चाहते, क्योंकि उसको पाने पर तुम तो आ ही जाओगे, ये बात है। तो ये कृष्ण के सखा सुना, जब कृष्ण के सखा तो बस इनका साथ, ये लोग पूरा न्योछावर करने को तैयार थे अपने आप। पर रही बात भाग मांगनी, ये भी डर के मारे वही डायलॉग आ रहे हैं, केवल भाग दे दो, उनको पता था कि ये भी शायद कुछ नहीं, लेकिन यहाँ थोड़ी भाग देना था, वो तो सब उठाई जो भी था, माल दुआ पकवाए मलवाए सब, और सारा एक नहीं थोड़ा बर्तन में निकाल के जैसे भिखमंगे को देते, पूरा बर्तन। कृष्ण आए, क्यों इतना गाढ़ प्रेम कृष्ण के प्रति क्यों है इन पत्नियों का, ब्राह्मण पत्नियों का? क्योंकि उसने कृष्ण के विषय में सुना था कि कृष्ण इतने दयालु है, कृष्ण इतने सुंदर है, कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम है, हमारा नाता पति केवल कृष्ण है, केवल कोई किसी का भी पति भागवत में निकल गया है कृष्ण है, बाकी सब विपत्ति है, पति है साहब की पति है। वास्तव में किसी के भी पति ओरिजिनल पति कृष्ण है, वो इसको मानते नहीं, मूर्खता है। तो है ना सर, कोई रक्षा करने वाला केवल भगवान, सबके आत्मा के पति वही है ना, सर्वे पति से तो भयं, भागवत में कितने श्लोक है पति के, ये तो मीरा ने जाना और माना कि गिरधर मेरा पति, न्याय हो गए, कब समझ में आएगा लोगों को कौन पति है, जिसको तथा कभी पति मानते उसकी रक्षा भी ये पति कर रहे हैं। रक्षा करने वाला कौन है, पहले हमने कहा अभी देवकी का, बाकी सब दुख देने वाले मारने वाले चिंता देने वाले थोड़े बहुत सुख देने वाले होंगे, लेकिन पूर्ण सुख पूर्ण आनंद पूर्ण रक्षा केवल कृष्ण के, जितनी जल्दी ये समझ में आ जाए उतना ही बेड़ा पार होगा हम लोगों का, कि कृष्ण पति है, वो प्रेम के विषय है, वो सब कुछ देते हैं और हमारा सब कुछ उसके लिए, ये विप्र पत्नियों का चरित्र है। मैं तो केवल छुआ इस प्रसंग को, टच किया, लेकिन इसको पूरा सुनेंगे तो बुद्धि खुल जाती है, सब उठा के चल गई, ब्राह्मण लोग रोकेंगे उसको, देखी गए तो चल रही है सब उठा के, तो धुआं करते हुए उसने मंत्र पढ़ा के आ, 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 बोले ऐसे नहीं मांगे थी, तो धुआं को छोड़ा कूद खड़े हो गए, बोलो हम मारे लगन के ढाका जा सकते, और कुछ मोटे मोटे ब्राह्मण से तो इतना पैर बुर्जा खड़ा कर टिकरा में सब लिखा गया है, लेकिन ये जैसे ब्रह्मपुत्र नदी की धारा पर्वत से जैसे यमुना जी निकलती है, तो कोई भी पत्थर पत्थर आए वो थोड़ी रुकेगी, उल्टा वेग फास्ट हो जाता है, आप देखिए कभी गंगोत्री गए हो तो जब बीच में बड़े बड़े चट्टान आती है पत्थर आता है तो धारा रुकती नहीं, वो तो वहां से फोर्स और बढ़ता है। तो ये नदी की धारा कृष्ण प्रेम की उफान थी इन पत्नियों में, कोई भी रोके आज रुकने वाली नहीं थी, क्योंकि वर्षों से जिसकी आशा लगाए बैठे थे वो आज नजदीक आ गए हमारे, और उसमें भी भूखे हैं, अब तो कुछ भी हो गए, और ये गई सब, और जब पत्नी और सब सामान लेकर गई और गई तो भगवान कैसे थे उसका बहुत सुंदर वर्णन किया गया, श्यामम हिरण्य बदिनी महाप्रभु इस श्लोक को बहुत आस्वादन कर मूर्छित हो जाते थे श्लोक सुनकर, कि पत्नियों ने कृष्ण को देखा वो कृष्ण कैसे थे, तो उसका वर्णन हाथों में कमल घुमाते हुए सखा के ऊपर रहते हुए श्यामम हिरण्य, बहुत सुंदरता का वर्णन। तो भक्तों ये है भागवत, ये है रस, ऐसे में कुछ ज्यादा इसमें मेरा भी इतना बुद्धि का प्रवेश नहीं है, लेकिन जो भी है मैं आप सब माताओं को यही संदेश देना चाहता हूँ इस प्रसंग से, कि वर्तमान जो हमारे संबंध है उसको कर्तव्य के रूप में हमें निभाना है, और शास्त्र गुरु के आदेश में, लेकिन हृदय जो है मन जो है वो भगवान में लगाना है, क्योंकि अल्टीमेट वही हमारे संबंध है, और इस संबंध से भी आपकी थोड़ी बहुत चाह या कर्तव्य है तो भी कृष्ण ही प्रोटेक्ट करेंगे उनको भी, अगर आपकी भक्ति भगवान में है तो वही भगवान आपके पति को या पुत्र को रक्षा करेंगे, दोनों ओर से चाहे अकेले समझ इस तरफ भगवान की भक्ति करने में ही जीवन की परिपूर्णता, ये कंफर्म बात है, कोई भी प्रसंग आप भागवत का लीजिए ये बात सामने है। तो हम माताओं का जीवन परतंत्र होता है आप लोगों का, बहुत सारी जिम्मेदारी होती है, पति को खुश करना, सासू को करना, वो तो होगी ही नहीं कभी, बिल्कुल टाइम नहीं है फिर भी करना है, ट्राई तो करना ही है। तो जो भी है क्योंकि सबको खुश करना पड़ता है, बच्चे की अपनी डिमांड होती है, ऊपर से फिर ये लोग आए हरे कृष्ण वाले भक्ति करना है, इनको खुश करना है गुरु, तो कितने को खुश करें, तो मेढक दलन न्याय जैसे हो जाता है, किसको सर, इसको एक मेढक को दूसरा कूदता है, पति को खुश कर तो सासू पूछ चढ़ा के, उनको खुश कर तो ननद इधर बैठी, तब तक इसको वाले आप आते ही क्या आऊ हम हमारे से क्या तो क्या करें बताओ, चारों ओर से सब सर खाते ऐसा लगता है ना। तो आप लोगों को सबसे ज्यादा आवश्यकता है सहन शक्ति की है, सबका सह है वो कहाँ से मिलेगी, यही से मिलेगी सिर्फ भूमि कृष्ण से, क्योंकि वो है शक्ति देने वाले, बुद्धि देने वाले, बल देने, सब वही देते हैं, और जो उनकी शरण में उनकी भक्ति करता है तो भगवान उसके संबंध से पूरे परिवार की रक्षा करते हैं, मंगल करते हैं, और नाता तो केवल भगवान से। तो आप सभी माताएं भाग्यशाली है कि इसको हम ग्रंथ भागवत से भक्ति में आपका प्रवेश है। बस जीवन पवित्र बनाइए, महामंत्र को नित्य जपिए, हरिनाम रखेंगे तो भगवान आपकी रक्षा करेंगे, आपकी इच्छा भी पूरी करेंगे, और इस तरह सत्संग में आते हुए शास्त्र को सुनते हुए भक्ति में उत्साह बढ़ता है। ये पत्नियों का इतना उत्साह ही कारण से हुआ, सुना था बस, जो सुनेगा नहीं वो कभी प्रगति नहीं कर सकता। रुक्मणी के विषय में यही प्रश्न है कि क्यों कृष्ण को पति मान ली, उसने कभी कृष्ण को नहीं देखा, उस समय था ही नहीं फेसबुक के, उसमें भगवान फोटो भी नहीं देखी हो, कोई मैसेज नहीं, कुछ नहीं, फिर भी उसको अपना पति मान ले, क्यों, क्योंकि उसने सुना था कृष्ण को, सुत्वा चित्त, उसमें भी यही श्लोक से चल, सुत्वा गुणान भुवन संदेश, प्रथम पत्र में यही लिखती है, मैंने आपके विषय में सुना है कि त्रिभुवन में सबसे सुंदर है, इसीलिए मेरा मत मेरा चित्त आप में लिख दो। तो भगवान के विषय में सुनते रहेंगे तो शुद्ध हो जाएंगे और भगवान के चरणों को पा जाएंगे, लेकिन जो भगवान के विषय में सुनता नहीं उनकी प्रगति बहुत मुश्किल है। तो आप कितना भी काम है परिवार का, संसार का, ये तो रहेगा, मर जाएंगे तो भी काम नहीं खत्म होने वाला, इसलिए समय निकालने का काम को एग्जिस्ट करते हुए अपना जपमाला कर लेना चाहिए, सत्संग में आ जाना चाहिए, बुद्धिमान थोड़ा आलस निद्रा को कम करते हुए, कैसे भी मैनेज, अपने अपने घर की अलग अलग स्थिति होती है, अलग अलग स्वभाव होता है, लेकिन लक्ष्य एक है कि हमको माला करना है, हमको सत्संग में जाना है, तो उसको कैसे मैनेज करें, सबको खुश करते हैं, और आप ट्राई करेंगे तो भगवान बुद्धि देंगे और वो व्यवस्था करेंगे, वो करने, वो देखते हैं कि हमारे, देखिए यहाँ पर वो पत्नी वो बैठी थी केवल सोच रही थी कि प्लान किसने बनाया, कृष्ण ने बनाया, अगर हमारी इच्छा शुद्ध है और हम प्रयास करते हैं तो बाकी काम उनका है, वो करेंगे, लेकिन हमें इच्छा तो करनी है, प्रयास तो करना है। तो ठीक है, जितना है समय अनुसार मैं बताया, और धन्यवाद देता हूँ आप माताओं को कि आप लगे हो कांति बिहारी की सेवा में, साधना में, बस आपको और शक्ति भक्ति दे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। प्रश्न है नहीं, ये नहीं बताया ब्राह्मण लोग क्या थे, यहाँ इतना लिखा गया टीका में, सनातन गोस्वामी जगह लिखते हैं कि भगवान तो चाहे तो पल में भूख मिटा देते, फिर भी ब्राह्मणों के पास भेज रहे, जबकि देने वाले नहीं है वो भी पता है क्यों, क्योंकि भगवान ये दिखाना चाहते थे कि ये ब्राह्मण लोग केवल वेदों को मंत्र पढ़े हैं और उसकी शुद्र आशा है स्वर्ग कामने की, स्वर्ग की कामना की, तो एक आशा थी स्वर्ग जाने की, और उसके कारण स्वर्ग जाने का जो भी प्रोसेस था यही सुनते थे, इसी वेदों को पढ़ा, उसके द्वारा कार्य भी यही कर रहे हैं, तो इसके कारण कुल में प्रकट होने का एक अभिमान, ऊपर से वेद मंत्रों का अभिमान, और इसीलिए वो कृष्ण की चर्चा तो ब्रज में सर्वत्र फैली हुई थी, है ना। लेकिन इसी प्रसंग में आएगा कि यही ब्राह्मण रोएंगे जब पत्नियां वापस आएगी कृष्ण से मिलकर, तो ये सारे ब्राह्मण प्रणाम करेंगे, वो कहते हमको मत प्रणाम कर लेकिन बोले आप भाग्यशाली कि कृष्ण को प्रेम करें, क्योंकि उसके संबंध से इसकी बुद्धि शुद्ध हो गई। तो ब्राह्मणों ने क्यों नहीं पढ़ा था, क्योंकि उसकी आशा स्वर्ग जाने की थी और वेद के मंत्रों में रटने पढ़ने का उसी प्लान में लग गए। इसलिए कृष्ण कथा सुनते थे वो भी चर्चा होगी तो सब, लेकिन उसको इतना महत्व क्योंकि ज्ञान से हृदय रूखा हो जाता है। लेकिन फिर भी सौभाग्य रहा कि कृष्ण प्रेमी से इनका कुछ नाता रहा, कृष्ण प्रेमी भक्त इस पर पत्नी हो, इसके कारण इसका भी उद्धार हो गया। तो ये ब्राह्मण भी भक्त बन जाएंगे, यही प्रसंग में लिखा गया है, और खूब पश्चाताप करेंगे, दिख हमारा बेकार है, हमारा जन्म बेकार है, हमारे वेद, क्योंकि इन वेद के सार भगवान कृष्ण पास में और हम लोग उनके सखाओं पर, ये सब रोएंगे। और पत्नियाँ तो जाना ही नहीं चाहती थी, लेकिन भगवान ने कहा तुम जाओ, मर्यादा रखनी थी भगवान, तो नहीं पढ़े थे ये ब्राह्मण लोग, सुने थे लेकिन अपनी इच्छा कामना में इतने वशीभूत थे कि कृष्ण प्रेम प्रकटने का। और ये पत्नियाँ स्त्रीय स्वभाव की थी और कृष्ण के माधुर्य सौंदर्य की कथाओं में मुक्त थी। इसके पूर्व जन्म का पत्नियों का कहीं लिखा गया है गर्गादि संहिताओं में, पता नहीं कितना प्रमाण था, लेकिन प्रकट जो सुखदेव जी कहते भागवत में कि इसी जन्म में उन्होंने सुना कृष्ण को, और सुनते ही उसमें मन लग गया, जो सुनता है मन लग गया। ठीक है, जो ये वो लोग स्वर्ग की कामना में थे, मंत्रों पढ़ने में थे, इसलिए उसको सुनते हुए भी निग्रह कर रहे हैं, ऐसा ही प्रश्न से पता लगता है। यस मैम,
इसलिए प्रेम उत्तम छे वेद का,
हां
रिचुअल्स,
हां 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 स्लाइड से प्रेम उत्तम है,
लेकिन ये का लेके मैं मांगो उसमें,
हां
कि इस
हाँ मैं ये कहना चाहता हूँ इस प्रसंग से कि वेद के मंत्र नीति नियम ये भी है, लेकिन क्यों है, कृष्ण की भक्ति करने के लिए कृष्ण को प्रेम करने, लेकिन वही प्रेम भक्ति न करके इसी मंत्रों से अभिमान बढ़ाए, इसी मंत्रों से अपने आप को पांडिकर अभिमान बढ़कर उसी प्रेम और भक्ति करने वाले का अपराध करे तो बेकार है ना ये, क्योंकि ये वेद मंत्र का महत्व है नीति यम नियम का, लेकिन इसका उद्देश्य क्या है, भगवान की भक्ति करना। गीता में 15-15 वेदांत कृत वेद विदेह जान, मैंने वेद बनाया है और वेदों का सार है मुझे जानना, तो ये तो सर्वत्र बात प्रचलित है। जैसे उद्धव स्वर्ग से पढ़कर आए थे ज्ञान न्याय शास्त्र मीमांसा सब, इससे बृहस्पति थे और 56 कोटि यादवों के महामंत्री थे, कृष्ण के सखा थे, लेकिन भगवान ने सोचा कि ये सब पढ़ा है ज्ञान ध्यान सब, लेकिन प्रेम नहीं पढ़ा, इसको वृंदावन भेजता हूँ, असली शास्त्र प्रेम शास्त्र ही गोपियाँ पढ़ाई, मैसेज देना नहीं था वास्तव में दिलाना था इनको कि रियल क्या है। तो ये तो बात सत्य है, महाप्रभु चैतन्य ने भी कहा 5 पुरुषार्थ कृष्ण प्रेम, धर्म अर्थ काम से भी परे, और प्रेम नहीं है वो व्यक्ति भिखारी है, बेकार है उसका ज्ञान खान सबसे। तो इस अनुसार वेद से भी या किसी भी यम नियम से महत्व है भक्ति का प्रेम का। तो अगर आप सही शास्त्र में और सही गुरु के निर्देश में रहेंगे हम लोग, तो इसी ज्ञान को अगर आप प्रेम तक पहुँचे, लेकिन तकलीफ कहाँ होती है कि शास्त्र को और गुरु को फॉलो न करें स्वतंत्र रूप में, जैसे मैं भी जानता हूँ मैं भी भागवत पढ़ लूंगा, मैं भी ये वेद पढ़ लूंगा, ये लोग क्या सिखाएंगे हमें, ये अभिमान होता है, और फिर उनका ज्ञान, ज्ञान तो फिर भी पढ़ता है, पढ़ता हूँ इसलिए ज्ञान तो आएगा ही, किसी से भी सुनूंगा तो ज्ञान तो आएगा ही आएगा, लेकिन वो शोभा नहीं देगा, जैसे बिना शादी किए स्त्री का गर्भ शोभा नहीं देगा। जबकि कोई स्त्री गर्भवती हो तो बड़ा सुंदर माना जाता है, वो पवित्र मानी जाती है, क्योंकि एक गुरु परंपरा को आगे बढ़ाने जा रही है, आदर और आदर से देखी जाती है ना, उनकी सुंदरता भी सब बढ़िया है, लेकिन बिना शादी के हो तब तो उसका कलंक माना जाता है। ऐसे किसी परंपरा गुरु के आश्रय शुद्ध संप्रदाय में अगर इस तरह समर्पित होकर किया जाए तब तो उस तत्व को पहुंचेगा, नहीं तो उल्टा रिएक्शन ही आएगा, क्या ये सब अभिमान और चक्कर आता है कई लोग। तो वेद मंत्र का और ज्ञान का और नीति नियम का भी बहुत महत्व है, लेकिन इनका सार भक्ति प्रेम। तो ये ब्राह्मणों में क्या तकलीफ था, वेद मंत्र जानते थे, यज्ञ भी करते थे, जो भागवत में यज्ञ करने को बुरा नाम तो नहीं करते, लेकिन फिर भी कमी कहाँ रह गई, उस यज्ञ के पुरुष कृष्ण है, उस वेदों के मूल वक्ता कृष्ण है, और वही उनसे मांगने आए उनके सखा, उस पर नजर नहीं, तो क्या फायदा इन वेदों का।
बेकार गया। जबकि दूसरी तरफ वो पत्नियां वेद नहीं जानती, मंत्र इतना नहीं जानती, लेकिन उनका हृदय भगवान को समर्पित है। तो भगवान ज्ञान कुल रूप ये सब नहीं देखते, भगवान प्रेम और भाव देखते। शबरी में कौन सा ज्ञान था, कौन ऊंचे कुल की, लेकिन प्रेम था। गुरु की कृपा से भक्ति का भगवान उसको देखने के लिए है। तो ये तो क्लियर है कि प्रेम का ही महत्व है, भक्ति का ही महत्व है। इसलिए हमें कोई ऐसा ज्ञान भी नहीं लेना है जो वेदों का भी है लेकिन भक्ति शून्य हो। ये सब मायावाद फिलोसफी तो बाहर की थोड़ी है, वेदों की है। कोई भी बात वेदों से लेकिन भक्ति में नहीं है, भगवान से नहीं है, तो हमें कोई मतलब क्या फायदा है उसका। बोझा बढ़ाने जैसा, अहंकार बढ़ाने जैसा। तो प्रेम भक्ति का ही महत्व है, ये तो प्रकट है। ओके धन्यवाद। टाइम हो गया ना, फिर आप लोग करी। ओके ऐसे हरे नाम हरे नाम हरे नाम एवं केवल हरे कृष्णा हरे
Hare Krishna, Hare Krishna. हरे हरे।